नमस्कार भारत, आज है 15 अप्रैल दिन शनिवार। मैं हूं अपूर्व कृष्ण। भुवनेश्वर में आज से भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, पार्टी का प्रभाव बढ़ाने पर होगा विचार। विपक्षी दल भी भाजपा का विजय रथ रोकने का कर रहे हैं प्रयास।
आज के हालात में कांग्रेस के बिना विकल्प नहीं बन सकता मोदी का, लेकिन सिर्फ कांग्रेस से ही विकल्प नहीं बन सकता।
नेपाल के पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र ने पिछले 11 वर्षों के गणतांत्रिक शासन का मांगा हिसाब। जानेंगे क्या है उनकी मंशा और चर्चा चंपारण की, जो भारत में गांधी के शुरुआती संघर्ष में बना पहला अहम पड़ाव।
गांधी जी आकर्षित हुए चंपारण जाने के लिए, इससे बेहतर शायद ये होगा कहना कि ऐतिहासिक शक्तियां कुछ इस तरह से तैयार हो रही थी कि उन्होंने गांधी को ठेल कर चंपारण पहुंचा दिया।
पर पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, तृप्ति श्रीवास्तव से। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज से ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में शुरू हो रही है। समझा जा रहा है कि 2 दिवसीय इस बैठक में प्रधानमंत्री समेत पार्टी के अधिकतर बड़े नेता शामिल होंगे। जानकारों का कहना है कि बीजेपी हाल में हुए विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद ओडिशा समेत कई राज्यों में अपना आधार मजबूत करने की कोशिश कर रही है। चीन ने चेतावनी दी है कि कोरिया और अमेरिका के बीच तनाव बेहद बढ़ गया है और किसी भी वक्त लड़ाई छिड़ सकती है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है कि जीत किसी की भी ना हो। अमेरिका ने कोरिया के प्योंगयांग परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ धमकी देते हुए कहा था कि वो एक तरफा फैसला ले सकता है। शनिवार यानी आज प्योंगयांग में देश के संस्थापक किम इल सुंग के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मिलिट्री परेड होगी। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कोरिया के शासक किम जोंग उन इस मौके पर एक और परमाणु परीक्षण कर सकते हैं। सीबीसी के पत्रकारों से बातचीत करते हुए उत्तर कोरिया के उप विदेश मंत्री हैन संग युन ने कहा कि ट्रंप उत्तर कोरिया को हथियारों से खत्म करने की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। अगर उन्हें लगा कि अमेरिका उन पर हमला करने वाला है तो वो पहले ही परमाणु हमला कर देंगे। हैन संग युन ने कहा, अगर अमेरिका खतरनाक सैन्य विकल्प लेकर आता है तो हम पहले ही हमला कर देंगे और इसका मतलब होगा युद्ध। ये थे हैन संग युल के शब्द। जर्मनी के अभियोक्ताओं ने कहा है कि मंगलवार को डॉर्टमुंड में हुए बम धमाके के बाद धमाकों की जिम्मेदारी लेने वाले पत्रों की जांच से ये संदेह हो रहा है कि क्या ये हमला कट्टरपंथी इस्लामिकों का काम था। धमाके वाली जगह से 3 मिलते जुलते पत्र मिले हैं जिनमें दावा किया गया है कि बोर्सिया डॉर्टमुंड फुटबॉल टीम की बस पर अल्लाह के नाम पर हमला किया गया था, लेकिन इनकी जाँच कर रहे विशेषज्ञों ने इन पत्रों की प्रामाणिकता पर संदेह जताया है। उनका कहना है कि वामपंथी दक्षिणपंथी अतिवादी या फिर नाराज फुटबॉल फैंस भी इस हमले के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। सीरिया में 4 घेराबंदी वाले शहरों से हजारों लोगों को निकाल लिया गया है। ये लोग वहां से हटाकर दूसरी जगह ले जाए जा रहे हैं और शुरुआती 30,000 लोगों में शामिल हैं। इदलीब प्रांत में विपक्षी इलाकों में 2 सरकारी कब्जे वाले कस्बों के रहने वाले अलप्पो शहर के पास पहुंचे जो राष्ट्रपति असद की सेनाओं के नियंत्रण में आता है। ठीक उसी वक्त वैसा ही अभियान विद्रोहियों के कब्जे वाले 2 इलाकों पश्चिमी दमस्कस के जबादनी और मदाया में भी चलाया गया। मदाया में रहने वाले मोहम्मद दरवेश दमस्कस में संघर्ष शुरू होने से पहले दांत की डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन पिछले 2 सालों से वो उन 2 डॉक्टरों में शामिल हैं जो 40,000 लोगों का इलाज कर रहे हैं। आज उन्होंने अपना गृहनगर छोड़ दिया और बीबीसी को ये संदेश भेजा। दुनिया भर का डर अब हम महसूस कर रहे हैं क्योंकि हम अपने घर से दूर हैं। मैं अकेला मदाया से बाहर जा रहा हूं, मेरा परिवार अब भी वहीं है और कई लोग मदाया में रहते हैं। हम इदलीब जा रहे हैं, अपना गृह नगर छोड़ना बेहद मुश्किल है। अपनी यादें, अपना परिवार, अपना देश, अभी बहुत बुरे ख्याल आ रहे हैं। ये थे मोहम्मद दरवेश के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। टैक्सी मुहैया कराने वाली कंपनी उबर ने अपने राजस्व और व्यवसाय दोनों में तेज वृद्धि के बावजूद साल 2016 में $28 लाख का घाटा दर्ज किया है। सैन फ्रांसिस्को में स्थित ये कंपनी उपभोक्ताओं को ऐप के जरिए ट्रांसपोर्ट मुहैया कराती है। पिछले साल कंपनी की बुकिंग 2 गुना हुई है और राजस्व $6.5 अरब तक बढ़ा है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव, और मैं हूं अपूर्व कृष्ण। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में आज से भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिन की बैठक शुरू हो रही है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी समेत पार्टी के तमाम बड़े भाजपा नेता हिस्सा लेंगे। पिछले महीने हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित भाजपा की नज़र अब नई जमीन पर है। इनमें ओडिशा भी शामिल है, जहां चुनाव अभी 2 साल दूर हैं, मगर पार्टी तैयारी में जुट गई है। भुवनेश्वर से संदीप साहू।
भाजपा अध्यक्ष अमित शाह कल जब भुवनेश्वर के बीजू पटनायक हवाई अड्डे पर पहुंचे तो उन्हें कमल की 2 मालाएं पहनाई गई। पहली माला केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री और उड़ीसा में पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में देखे जा रहे धर्मेंद्र प्रधान ने पहनाई, जिसमें 21 कमल थे, और दूसरी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बसंत पंडा ने, जिसमें 147 कमल थे। संकेत स्पष्ट था, उड़ीसा के 21 लोकसभा क्षेत्र और 147 विधानसभा क्षेत्रों पर कब्जा करने की भाजपा की मुहिम पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से शुरू होगी। अब ये बात किसी से छुपी नहीं है कि उत्तर प्रदेश में भारी जीत के बाद उड़ीसा अब भाजपा का अगला पड़ाव है। इसी विश्वास को उजागर करते हुए पार्टी के उड़ीसा प्रभारी अरुण सिंह ने कहा,
पूरा उड़ीसा का कार्यकर्ता जोश और उमंग में है अपने नेता को हार्दिक अभिनंदन स्वागत करने के लिए। इस कार्य समिति के बाद कार्यकर्ताओं को और प्रेरणा और ऊर्जा मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उत्साह से काम करेंगे आने वाले समय में 2019।
लेकिन सचमुच कितना दम है 2019 में उड़ीसा में सत्ता में आने के भाजपा के इस दावे में। जिला परिषद चुनाव में पार्टी ने पिछले चुनाव के मुकाबले बेहतरीन प्रदर्शन जरूर किया, लेकिन फिर भी सत्तारूढ़ बीजू जनता दल से काफी पीछे रही। बीजेड के प्रवक्ता कैप्टन दिव्यशंकर मिश्र दावा करते हैं कि पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की लोकप्रियता अब भी बरकरार है।
सर, ये जो 2014 के तूफान में सुनामी में कुछ नहीं हो पाया, 2017 के इतने बीजेपी के नारेबाजी में सिर्फ 7 जिला परिषद, तो आगामी जो आने वाली चुनाव है 2019 में।
लेकिन भाजपा नेताओं को पूरा विश्वास है कि 20 साल बाद इतिहास अपने आप को दोहराने जा रही है। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सुरेश पुजारी कहते हैं,
1997 जो मेगा इवेंट हुआ उड़ीसा राजनीति का बड़ा परिवर्तन था।
1997 में यहां जो मेगा इवेंट हुआ था, उसके बाद उड़ीसा में राजनीति ने करवट बदली। राजनीति के आकाश से कांग्रेस नदारद हो गई। पुजारी के इस दावे का एक अर्थ ये निकाला जा सकता है कि सन 1997 में भुवनेश्वर में हुई भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद जिस तरह से भाजपा ने तत्कालीन जनता दल को तोड़ने और बीजू जनता दल को बनाने में अपना पूरा सहयोग दिया था, वही कोशिश फिर से करने वाली है। हाल ही में बीजेड सांसद तथागत सतपति ने भाजपा पर उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश करने का खुला आरोप लगाकर ये साबित कर दिया था कि ऐसी संभावना महज भाजपा द्वारा फैलाई गई अफवाह या अटकलबाजी नहीं है। संदीप साहू, BBC भुवनेश्वर।
एक और भाजपा जहां अपना विजय रथ आगे ले जाने की मुहिम में जुट गई है, वहीं उसके विरोधी इस पर लगाम लगाने के उपाय तलाश रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने कल अम्बेडकर जयंती पर एक सभा में कहा कि वो लोकतंत्र को बचाने के लिए किसी से भी हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। दूसरे दल कितने आतुर होंगे इसके लिए, ये समझने के लिए हमारे सहयोगी विकास त्रिवेदी ने बात की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महासचिव DP त्रिपाठी से।
राजनीतिक यथार्थ ये कहता है आज की तारीख में कि अगर मोदी के विरुद्ध वैचारिक संघर्ष, राजनीतिक संघर्ष को कामयाब करना है तो सभी विपक्षी राजनीतिक दलों को एक साथ मिलकर ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इस संदर्भ में मायावती जी का बयान स्वागत योग्य है। उन्होंने जो कहा है कि EVM के मसले पर तो विपक्ष की एकता इसमें दिखी। मेरा मानना है कि इसको सिर्फ EVM के मसले तक सीमित नहीं रखना चाहिए। जैसा कि शरद पवार ने अपनी आत्मकथा में कहा है कि आज के हालात में कांग्रेस के बिना विकल्प नहीं बन सकता मोदी का, लेकिन सिर्फ कांग्रेस से ही विकल्प नहीं बन सकता। दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस अभी इस असलियत को नहीं समझ रही है। जितनी जल्दी समझ ले उतना अच्छा हो।
लेकिन अगर ऐसा कोई महागठबंधन बनता है, सारी पार्टियां साथ आती हैं, तो आपको क्या लगता है कि उसकी शेप क्या होगी या उसकी डायरेक्शन क्या होंगे?
उसका डायरेक्शन देश में एक नए कार्यक्रम के अनुसार लोगों के विकास के लिए नीति बनाना होगा। जरूरी नहीं कि इसको महागठबंधन कहा जाए, ये देशभक्त मोर्चा भी हो सकता है। आज देश के टूटने का खतरा है मोदी सरकार की वजह से। मोदी सरकार ने जो आतंक का माहौल बना रही है देश में, गोरक्षक मनुष्य भक्षक बन रहे हैं, जहां जानवर के लिए आदमी को मारा जा रहा है, इस तरह का काम हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ था। इसलिए देश को बचाने के लिए देशभक्त मोर्चा बन सकता है।
तो क्या कोई एक ऐसा मुद्दा होगा जिस पे सारी पार्टियां सहमत हों?
मेरी व्यक्तिगत राय है कि आज के हालात में देश बचाओ, संविधान बचाओ, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। आज हमारे मौलिक अधिकारों पर हमला हो रहा है, लोगों के खान पान की आज़ादी पर हमला हो रहा है, लोग रहें किस तरह, बोलें किस तरह, विचार किस तरह रखें, इस पर हमला हो रहा है। जो देश की आज़ादी के नेताओं ने संविधान के माध्यम से हमें मौलिक अधिकार दिए थे, उस पर हमला हो रहा है, एक बहुत बड़ा मसला है।
एनसीपी नेता डीपी त्रिपाठी से बात कर रहे थे विकास त्रिवेदी। और आगे बढ़ने से पहले एक नज़र आज के अखबारों की बड़ी खबरों पर। तृप्ति श्रीवास्तव उन पर नज़र डाल चुकी हैं। तृप्ति, भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, इनकी भी चर्चा होगी ही अखबारों में?
बहुत सभी अखबारों में इसकी चर्चा है, लेकिन एक अलग एंगल से हिंदुस्तान टाइम्स ने इस पर लिखा है कि भुवनेश्वर में जो दो दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक हो रही है, उस पर अगर सबसे ज़्यादा किसी पर नज़र रहेगी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर होगी, और उसका आकलन उन्होंने वहाँ पर लगे पोस्टर से किया है। उनका कहना है कि वहाँ पर लगे पोस्टर उनके बढ़ते कद का संकेत हैं, जिसमें अंदर जो पोस्टर लगे हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी है, तो दूसरी तरफ आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण वाला पोस्टर लगाया गया है, और इकलौते ऐसे वही सीएम है जिनका अंदर पोस्टर दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम इंडियन एक्सप्रेस की बात करें तो वहां पहले पन्ने पर कश्मीर से जो आजकल वीडियोज आ रहे हैं सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, वीडियो के बदले जो वीडियो एक और आया है, अखबार ने लिखा कि सीआरपीएफ के जवान के साथ कश्मीरी युवकों की मारपीट के वीडियो के सोशल मीडिया में वायरल होने के दो दिन बाद एक और वीडियो आया है, जिसमें एक आदमी को आर्मी की जीप के बोनट से बांधकर घुमाया जा रहा है और उसके पीछे ट्रक चल रहा है, उस व्यक्ति का इंटरव्यू भी उन्होंने इसमें छापा है। अमर उजाला ने आयकर विभाग की क्लीन मनी अभियान को पहले पन्ने पर जगह देते हुए लिखा कि नोटबंदी के बाद काले धन का पता लगाने को लेकर आयकर विभाग की ओर से शुरू ऑपरेशन क्लीन मनी अभियान के दूसरे चरण में काफी मात्रा में अघोषित रकम का पता चला है, बल्कि 60,000 से ज्यादा ऐसे लोगों को छांटा भी गया है जिन्होंने नोटबंदी के दौरान अत्यधिक नकद बिक्री की थी। और एक और चलते चलते मैं आपको बता देती हूँ, भारत टाइम्स ने लिखा है कि कुलभूषण जाधव पर भारत की 14वीं कोशिश भी फेल हो गई है। भारत ने शुक्रवार को 14वीं बार कुलभूषण जाधव से मुलाकात की इजाजत मांगी थी, जिसे पाकिस्तान ने ठुकरा दिया।
जी, कुलभूषण जाधव का ये मुद्दा लगातार सुर्खियों में छाया हुआ है। इन पर ध्यान है हमारा, और इसी खबरें हम देते रहेंगे आपको। फिलहाल अखबारों की बड़ी खबरों पर ध्यान दिलाने के लिए धन्यवाद तृप्ति श्रीवास्तव।
बीबीसी इंडिया पोल।
कश्मीर में वोटर नाराज क्यों? पिछले विधानसभा चुनाव में 60% मतदान हुआ, पर अब श्रीनगर उपचुनाव में 100 में से 7 लोगों ने वोट दिया। कश्मीर में माहौल सुधारने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या करना चाहिए? इस बार इंडिया बोल में चर्चा इसी विषय पर होगी। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 15 अप्रैल शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811 7000 या 1811 7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
बीबीसी हिंदी सेवा की दिन की पहली सभा में आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत। नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र कल अचानक तब चर्चा में आ गए जब उन्होंने गणतांत्रिक नेपाल के बीते 11 साल का लेखा जोखा मांगा। क्या है ये मामला, समझने के लिए हमारे सहयोगी संदीप सोनी ने काठमांडू में बीबीसी नेपाली सेवा के सहयोगी सुरेंद्र फोयाल से संपर्क किया।
नेपाल का नई साल है विक्रम संवत 2074, तो ये नई साल के अवसर पर शुभकामनाएं मुबारक देने की एक प्रचलन है। तो औपचारिक तौर पर राजतंत्र हटने के बाद भी पूर्व राजा शुभकामना देते रहते हैं, तो उन्होंने फिर दिया एक शुभकामना संदेश जो प्रेस को मिला, यहाँ का एक राष्ट्रीय समाचार पत्र न्यूज पेपर है उसमें छपा है कि पूर्व राजा ने मांगा है 11 साल का हिसाब किताब।
इसके राजनीतिक मायने देखे जाएं, इसकी पृष्ठभूमि में जाया जाए तो इसे कैसे समझें, कुछ मायने निकलते हैं या इस गणतंत्र पे किसी तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं?
जी बिल्कुल, वो गणतंत्र पर सवाल खड़े करते आ रहे हैं। पूर्व राजा तो वापस आने की बात नहीं कर रहे हैं सीधा हिसाब से, मगर उनके पीछे आगे पीछे जो होते हैं, कोई हिंदू राजतंत्र की पुनर्बहाली की मांग कर रहे हैं, यहाँ भी कुछ हिंदू एलिमेंट, और यहाँ हिंदू राजतंत्र के पक्ष में भी है एक राजनीतिक पार्टी, कभी कभी कुछ लहर फैल जाती है, मगर सीधा हिसाब से पूर्व राजा ने वापस आने की बात नहीं की है।
वैसे नेपाल का जनमानस जो है वो अब किसके ज्यादा नजदीक समझ में आता है, क्या वो अभी भी राजा के प्रति भक्ति रखता है या वो अपने आप को गणतंत्र के ज्यादा नजदीक महसूस करता है?
अभी तो पूरा विभाजित है, एक तरफ तो कहीं भी नहीं है जनमत। राजा और राजतंत्र और हिंदू राजतंत्र की पुनर्बहाली के पक्ष में भी कुछ जनमत है, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि पूरा देश में ऐसा ही माहौल है।
काठमांडू से ये थे बीबीसी संवाददाता सुरेंद्र फुयाल। नेपाल नरेश के पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र ने जो 11 साल का हिसाब मांगा है उसके पीछे उनकी क्या मंशा हो सकती है, समझने के लिए हमारे सहयोगी संदीप सोनी ने दक्षिण एशिया मामलों के जानकार प्रोफेसर एस डी मुनि से संपर्क किया।
वो ये सवाल उठाकर सत्ता में वापस आना चाहते हैं, उनको एनकरेजमेंट मिल रहा है कुछ तबकों से जो नेपाल में भी है, नेपाल के बाहर भी है, जो हिंदू धर्म के नाम पे पहले हिंदू धर्म लाना चाहते थे उसके बाद राजा को लाना चाहते है, इसीलिए उनकी जुबान खुलने लगी है। लेकिन जो मोनार्की का अंत हुआ उसका अगर सबसे बड़ा क्रेडिट दिया जाए तो श्री ज्ञानेंद्र को देना चाहिए कि उन्होंने न किसी की बात सुनी, न पड़ोसियों की बात सुनी, न अपने लोगों की बात सुनी, और जब उन्होंने टेक ओवर किया 2005 की फरवरी में तो उन्होंने ऐलान किया कि 6 महीने में मैं इंसर्जेंसी खत्म कर दूंगा, और वो इंसर्जेंसी सिर्फ पॉलिटिकल हल से जो अनप्रेसिडेंटेड है दुनिया के इतिहास में। अगर देखिए जो नेपाल में हुआ है वो अगर यूरोप में होता तो 5-7 नोबेल प्राइजेज बट गए होते। जो पीसफुल तरीके से इंसर्जेंसी का अंत हुआ है, उसका राजनीतिक समाधान हुआ है, वो एक अनप्रेसिडेंटेड बात है। और राजा ज्ञानेंद्र तो उसको फौज से खत्म करना चाहते थे। उनसे पूछिए क्या हुआ, उनसे पूछिए कि आपके भाई को किसने मारा, उसके परिवार की तबाही किसने की, उनसे पूछिए कि आपने 2001 में आपके भाई की हत्या हुई और 2002 में आपने डेमोक्रेटिक पार्टी से सत्ता ले ली और अपने मन मानी, कभी किसी को प्रधानमंत्री, कभी किसी को कुछ बनाने लगे, तो इस सब का हिसाब दीजिए ना।
मुनि साहब, आपने जिक्र किया कि राजा ज्ञानेंद्र जो हैं वो सत्ता में वापसी करना चाहते हैं, आपको लगता है कि नेपाल के मौजूदा जमीनी हालात इस तरह के हैं कि सत्ता में वापसी हो सकती है, गणतंत्र किसी तरह से दोबारा हटाया जा सकता है?
देखिए, दुर्भाग्य की बात आज नेपाल में ये है कि एक तो नेपाल में भयंकर रूप से राजनीतिक ध्रुवीकरण हुआ पड़ा है। वो ध्रुवीकरण राजनीतिक पार्टियों में हुआ है, एक तरफ तो अलायंसेस बदल रहे हैं वैसा हुआ है, दूसरा ध्रुवीकरण अब पहाड़ और मधेश में हो गया है, तराई में रहने वाले लोगों में, और तीसरा ध्रुवीकरण अगर वो ज्यादा जिद करेंगे तो ये हो जाएगा कि राजतंत्र को और हिंदू धर्म को लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। तो इस तरह के ध्रुवीकरण से नेपाल की राजनीतिक परिस्थिति का और अधिक बिखराव होगा।
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना,
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
भारत की आजादी की लड़ाई में चंपारण सत्याग्रह को मील का पत्थर माना जाता है। इसी आंदोलन की वजह से भारतवासियों ने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा के तौर पर पहचाना। चंपारण सत्याग्रह की 100वीं वर्षगांठ पर उस दौर को याद कर रहे हैं रेहान फजल आज विवेचना में।
साहस हो, मन में निश्चय हो, साहस हो, मन में निश्चय हो, सत्याग्रह का निर्णय हो, सत्याग्रह का निर्णय।
आज से 100 साल पहले इतिहास ने आगे बढ़कर मोहनदास करमचंद गांधी का हाथ थामकर चंपारण के हाथ में रख दिया था। 15 अप्रैल 1917 की काली स्याह रात, आधी रात होने को है, मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर पटना से आई एक ट्रेन रुकती है। राजकुमार शुक्ला के साथ एक मुसाफिर ट्रेन से उतरता है। इतिहास के प्रोफेसर आचार्य जेबी कृपलानी उसका स्वागत करने स्टेशन आए हुए हैं। उनके हाथ में लालटेने हैं, लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पाते क्योंकि वो तीसरे दर्जे में सफर कर रहा है। क्या वजह है कि एक शख्स गुजरात से करीब 2000 किलोमीटर का रास्ता तय कर वहां पहुंचा था। गांधी शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष कुमार प्रशांत बताते हैं।
गांधी जी चंपारण जाने से पहले गोपाल कृष्ण गोखले को दिए हुए उस वचन की पूर्ति में लगे हुए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुंह बंद करके आंखें खुली करके एक साल भारत को देखो। स्वाभाविक था कि गांधी जी के सामने सवाल ये था कि जो भारत देखा उन्होंने और जो दक्षिण अफ्रीका में किया उन्होंने, उसके बाद की भूमिका उनकी क्या बनती है। ऐसे समय में रामकुमार शुक्ल नाम के एक व्यक्ति कांग्रेस के अधिवेशन में पहुँचते हैं और उनको ये लगता है कि जितने नेता वहाँ हैं जो कांग्रेस के मन से भाषण करते हैं, बातें कहते हैं, उनमें ये आदमी कुछ अलग तरह का है। तो वो गांधी जी से मिलते हैं और उनको ये बताते हैं कि चंपारण से मैं आया हूँ और वहाँ किसानों की ऐसी स्थिति है। गांधी जी कई बार टालते हैं उनको, क्योंकि गांधी जी बिहार भी नहीं जानते हैं कि कहाँ है, चंपारण तो बिल्कुल ही नहीं जानते हैं, भारत के किसानों से भी बहुत खास परिचय नहीं है उनका, और ये नील की जो खेती का संकट है वो तो बिल्कुल भी नहीं समझते हैं कि क्या चीज़ है ये, इसलिए वो इसमें बहुत पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये रामकुमार शुक्ल इस तरह से उनके पीछे पड़ जाते हैं कि जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ वो उपस्थित रहते हैं और एक ही बात कहते हैं कि समय तो दीजिए, कब चलेंगे आप। करीब करीब उनसे एक तरह से पीछा छुड़ाने के उद्देश्य से ही गांधी जी ने कहा कि ठीक है, आइए कलकत्ता आइए और वहाँ से मैं आपके साथ चलता हूँ। और रामकुमार शुक्ल अपने दिए समय पर कलकत्ता पहुँच जाते हैं और उनको लेकर के वहाँ से चल पड़ते हैं। तो गांधी जी आकर्षित हुए चंपारण जाने के लिए, इससे बेहतर शायद ये होगा कहना कि ऐतिहासिक शक्तियाँ कुछ इस तरह से तैयार हो रही थीं कि उन्होंने गांधी को ठेल कर चंपारण पहुँचा दिया।
चंपारण में गांधी जी की उपस्थिति मात्र ही नील की खेती करने वाले किसानों में एक खास तरह की उमंग भर देती है। लेकिन नील की खेती करने वाले अंग्रेज प्लांटर्स उनसे इतने क्षुब्ध होते हैं कि उन्हें अगले ही दिन चंपारण छोड़ने की नोटिस पकड़ा दी जाती है।
गांधी जी जब चंपारण पहुंचते हैं तो नौसिखो आदमी नहीं है, बिल्कुल परिपक्व, दक्षिण अफ्रीका की एक बहुत बड़ी लड़ाई का नेतृत्व करके उसमें विजयी होकर वो भारत आए हैं। और जिस तरह की परिस्थिति वो चंपारण में पड़ते हैं, करीब करीब ठीक वैसी ही परिस्थिति में वो दक्षिण अफ्रीका से गुजर चुके हैं, इसलिए उनके लिए नया कुछ भी नहीं है। वो आने से पहले इस बात की तैयारी कर चुके हैं कि शायद वहाँ से पहुँचते ही मुझको वहाँ से निकाल दिया जाएगा, तो अपना बयान भी बना कर आए हैं कि अगर निकाला जाएगा तो उनको क्या कहना है। तो इसीलिए जब उनको वो नोटिस मिलती है, उस समय वो कहीं चंपारण के दूर इलाके में जा रहे हैं, हाथी पर बैठे हुए हैं, हाथी पर ज़िंदगी में पहली बार बैठे हैं और बड़ी मुश्किल से अपने को संभाले हुए हैं, तब तक पीछे से एक साइकिल पर आदमी आता है और वो कागज़ लहरा के उनको दिखाता है कि उनके लिए कुछ लेकर आया है, तो वो रुकते हैं, उतरते हैं और उनको आदेश मिलता है कि आपको जिला छोड़ देना चाहिए। वो तुरंत उसके साथ चल देते हैं कि जिसने आदेश दिया है चलो उससे मिल लेते हैं, और कई तरह की सवारियों से गुजरते हुए वो पहुँचते हैं वहाँ पर और वो कहता है कि भाई इसकी पावती पर साइन करके हमको दे दीजिए कि आपको मैंने दे दिया ऑर्डर। तो उसी कागज़ के पीछे वो चिट्ठी लिख देते हैं जिला मजिस्ट्रेट को और उसमें सिर्फ चार लाइनें लिखते हैं कि आपका आदेश मिला और मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं आपके आदेश को मान सकूं, क्योंकि मैं जिला छोड़कर नहीं जाऊंगा।
तब तक सरकार के आदेश की इस तरह अवज्ञा करने की जुर्रत किसी भारतीय ने नहीं दिखाई थी। गांधी की जीवनी लिखने वाले उनके पौत्र राजमोहन गांधी बताते हैं।
तो जब अंग्रेजी अफसर ने कहा गांधी जी से कि आप यहाँ से निकलिए, तो गांधी जी ने कहा मैं नहीं निकलने वाला हूँ, आपको सजा देनी है तो दीजिए, आपका ये गलत आदेश है, मैं तो लोगों की मदद के लिए आया हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। जब उन्होंने ये नहीं शब्द इस्तेमाल किया, मैं नहीं आपकी बात मानूंगा, तो उसका असर देश भर में काफी हुआ और अखबारों में भी ये बात छपी कि ये गांधी करके एक आदमी अभी 2 साल पहले वापस हिंदुस्तान आया है साउथ अफ्रीका से, लेकिन ये इतने दूर अपने गुजरात से यहाँ पहुँच गया है चंपारण में, तो कहता है कि मैं नहीं सरकार का आदेश मानूंगा क्योंकि मेरी कॉन्शियंस कहती है, मेरी अंतरात्मा कहती है गलत बात है।
अदालत में गांधी साफ कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि कानून में उनकी आस्था नहीं है, लेकिन उनकी अंतरात्मा की आवाज कानून से कहीं बढ़कर है। चंपारण में गांधी इतना बदलते हैं कि नाम धाम काम वस्त्र बोली सब बदलते चले जाते हैं, उनको नाम भी एक नया मिलता है, बापू।
चंपारण में दरअसल में सत्याग्रह तो कुछ हुआ ही नहीं था, एक भी जुलूस नहीं निकला, एक भी धरना नहीं हुआ, कहीं नारा लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। गांधी जी ने पहुँच करके पहला काम ये किया कि भाई मैं सच में जानूँ तो कि क्या समस्या है, तो मुझको कुछ लोगों से बात करनी चाहिए। किसानों से बात शुरू करते हैं और उनको दिमाग में आता है कि इन सबको रिकॉर्ड बना लेना चाहिए, क्योंकि सरकार को अगर कहना हो कि आपके यहाँ न्याय हो रहा है तो मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। तो बस वो जो लोगों के बयान दर्ज करने वाला काम शुरू किया उन्होंने, उसी ने तो सबको दहशत में डाल दिया। तो बहुत मार्के की बात है कि सच्चाई को दर्ज करने में भी बड़ी ताकत होती है, सच्चाई कहने में तो बहुत आगे की बात हो जाती है। तो प्रशासन को जैसे ही पता चला कि वहाँ पर बयान दर्ज हो रहा है और किसान खुद आकर बोल रहे हैं, तो वो लोग घबराए कि ये क्या हो रहा है। और फिर उन लोगों ने ऐसा किया कि एक दरोगा को बिठा दिया वहाँ पर। तो गांधी जी ने कहा कि उसको ठीक से कुर्सी वर्सी दे दो बैठने के लिए, वो भी सुनेगा और वो भी देखेगा कि कौन क्या कर रहा है। न तो गांधी जी को भाषा समझ में आती थी, न वो हिंदी ठीक से बोल पाते थे उन लोगों के साथ, और जो सरकारी दस्तावेज थे सब कैथी भाषा में लिखे जाते थे, तो सब कुछ गांधी जी के लिए अजनबी था। तो जितने बड़े वकील हैं राजेंद्र बाबू और उनके साथ के लोग, वो पूछते हैं कि भाई हम क्या करें आपके लिए, तो कहते हैं कि न तो आपकी वकालत की मुझको ज़रूरत है और न मुझको आपकी अदालत की ज़रूरत है, मुझको तो आपसे क्लर्कों का काम लेना है। ये लोग जो बोल रहे हैं उसको दर्ज करें और जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ उसको समझें, यही काम आपको करना है। इसने मिला करके वो माहौल गढ़ा, आज के शब्द में कहूँ तो शायद फियर साइकोसिस प्रशासन में ऐसा पैदा हुआ कि वो लोग तुरंत घबरा गए, उनको समझ भी नहीं आया कि इस आदमी से कैसे डील करना चाहिए। और ये आदमी खुली किताब की तरह था, वो कलेक्टर के यहाँ पहुँच करके उसने खुद ही दे दिया कि इतने बयान आज तक हुए हैं, आप देख लीजिए, फिर आगे की बात में देखता हूँ। तो ये जो खुलापन था उनके व्यवहार का, जिसकी पूरी ट्रेनिंग उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में कर ली थी, वो पूरे आश्वस्त है कि खुलेपन का जो हथियार है वो बहुत मजबूत होता है, तो उसका उन्होंने वहाँ इस्तेमाल किया और इस तरह से उस परिस्थिति को उन्होंने बिल्कुल ऐसा बना दिया जैसे वो सब लोग उसमें जुड़ गए।
चंपारण में गांधी किसानों की लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं, सामाजिक दूरियों को भी पाटने की कोशिश कर रहे हैं। वो आग्रह करते हैं कि सबकी रसोई एक जगह बने, हर बड़ा शख्स अपने साथ एक सेवक या रसोईया लेकर आया हुआ होता है। गांधी इसे अनावश्यक बताते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी आत्मकथा में लिखते हैं,
गांधी जी के साथ रहने की वजह से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जबरदस्त बदलाव आया। मैं जाति नियमों का बहुत कड़ाई से पालन करता था और गैर ब्राह्मण के हाथ का छुआ कुछ भी नहीं खाता था। धीरे धीरे हम सब लोग साथ खाना खाने लगे। एक एक कर हमने अपने सारे नौकर वापस भेज दिए। हम अपने कपड़े खुद धोते, कुएं से खुद पानी निकालते और अपने बर्तन भी खुद ही धोते। अगर हमें पास के गांव में जाना होता तो हम पैदल ही जाते। ट्रेनों में हम तीसरे दर्जे में सफर करते। हमने बिना पलक झपकाए अपने जीवन के सारे आराम छोड़ दिए थे।
गांधी के प्रयासों का परिणाम है कि किसानों की समस्याओं के लिए चंपारण एग्रेरियन कमेटी बनाई जाती है। गांधी जी भी इसके सदस्य बनाए जाते हैं। इस समिति की सिफारिश के आधार पर तीन कठिया व्यवस्था समाप्त कर दी जाती है, किसानों के लगान में कमी लाई जाती है और उन्हें क्षतिपूर्ति का धन भी मिलता है।
मैं कहूँगा कि ये गांधी जी की भारत में पहली पाठशाला थी जहाँ गांधी जी की पढ़ाई हुई। इस देश को उन्होंने समझा, इस देश के लोगों को बहुत नज़दीक से देखा, उनकी सरलता और सादगी के पीछे की जो ताकत है उसको पहचाना उन्होंने, क्योंकि अभी तक उस सादगी और सरलता के पीछे की मूर्खता को हम लोग पहचानते थे, उन्होंने उस ताकत को पहचाना। लोक भाषा में काम करने की ताकत को उन्होंने सीखा, क्योंकि बाद में उन भाषाओं में वो काम करने लगे। तो जिसको कहते हैं ना कि आप एक ठौर ढूंढते हो अपना, जहाँ पर पांव अड़ा करके आगे बढ़ना है, चंपारण के आंदोलन की वो भूमिका गांधी के जीवन में है।
पटेल, बीबीसी दिल्ली।
और सभा समाप्ति से पहले मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज से ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में शुरू हो रही है। चीन ने चेतावनी दी है कि कोरिया और अमेरिका के बीच तनाव बेहद बढ़ गया है और किसी भी वक्त लड़ाई छिड़ सकती है। जर्मनी के अभियोक्ताओं ने कहा है कि मंगलवार को डॉर्टमंड में हुए बम धमाके के बाद धमाकों की जिम्मेदारी लेने वाले पत्रों की जांच से संदेह है कि क्या यह हमला वाकई में कट्टरपंथी इस्लामिकों का काम था। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। आज तकनीकी सहयोग दिया शाकिर आलम ने। अब से अगली मुलाकात होगी शाम 7:30 बजे। दिन भर में अब अपूर्व कृष्ण को अनुमति दें। नमस्कार।